نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد
دین اور علم سکھاتے ہوئے سامنے والے کی پوری رعایت رکھنی چاہیے. ایک ہوتی ہے بے ادبی کہ ادب سے بیٹھ سکے پھر بھی ادب سے نہ بیٹھے, اور دوسرا ہے کہ معذور اور مجبور. تو اس وجہ سے سامنے والے کو دیکھنا چاہیے. کالج یونیورسٹی کے بچے کبھی آ جاتے ہیں جو نیچے بیٹھنے کے بالکل عادی نہیں اور بہت محبت اور شوق سے آتے ہیں, اور آپ ان کو اتحیات کے پوزیشن میں بٹھاتے ہیں, دوسری مرتبہ آئے گا تو بات شروع کرنے سے پہلے دیکھ لو اور کہو کہ بھائی آرام سے بیٹھ. نکاح پڑھاتے وقت بھی نہیں خیال کرتے اس کا, تقریر شروع کر دیتے ہیں اور اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ پہلی مرتبہ اس طرح بیٹھا ہے کسی کے سامنے. تو ہر شخص جو ہے وہ دو زانو التحیات اور درود شریف اور دعا سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. ہر مسلمان اتنا تو بیٹھ سکتا ہے اس لیے کہ وہ التحیات میں بیٹھتا ہے. میں نکاح کے وقت بھی تقریر شروع کرنے سے پہلے دلہا میاں کا جائزہ لیتا ہوں, اور اگر وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں ہے تو میں کہتا ہوں کہ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ ابھی, اس لیے کہ میں کچھ بولنے والا, پھر بات شروع کرتا ہوں. اس بیچارے کے لیے کتنی تکلیف ہوگی. اور ادب جو کر سکتا ہے وہ بے ادبی کرے یہ بہت بڑی. اس پر کبھی گفتگو ہوئی تو کروں گا انشاءاللہ, بہت دفعہ کرتا ہوں, مگر یہ قاعدہ یاد رکھ لو, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ادب ہوگا تو کچھ ملے گا, ادب نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ملے گا. اور ادب سے مراد صرف ظاہری ادب نہیں, اصل ادب یہاں ہوتا ہے دل میں. دل میں ادب ہے لیکن معذور ہے تو چار جانوں بیٹھا ہوا ہے, معذور ہے تو ٹیک لگا کر بیٹھا ہے, معذور ہے تو کرسی پر بیٹھا, یہ بے ادبی تھوڑی ہے. یہ جتنے لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں شرم محسوس ہو رہی ہوگی, اور یہ سوچتے ہوں گے کہ یار ہماری معذوری نہ ہوتی تو ہم بھی زمین پہ بیٹھتے. یہ ادب ہی ہے. ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ کے یہاں جب اتنی اجازت ہے تو ہم تو مخلوق ہیں. ٹھیک, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے, دو زانوں بیٹھنا چاہیے, ادب سے بیٹھنا چاہیے, ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن معذور ہے تو کوئی حرج نہیں. تو با ادب با نصیب, ادب ہے تو کچھ ملے گا, ورنہ بے ادب بے نصیب. بے ادبی سے بہت محرومی ہوتی ہے, اور بے ادبی میں محرومی ہوتی ہے تو نافرمانی میں کتنی محرومی ہوگی. اپنے استاد اور اپنے شیخ کی جو نافرمانی کرتا ہے, تین رشتے بہت نازک ہیں, ماں باپ کا رشتہ, استاد کا رشتہ اور شیخ کا رشتہ. نافرمانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھی گول گول بات کر کے ہم نکل جاتے ہیں, گول گول بات کر کے نکل جاتے ہیں. اور ماں باپ شریف ہوتے ہیں, استاد بھی شریف ہوتا ہے, شیخ بھی شریف ہوتا ہے, تو کیا وہ ہمیں جھٹلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ وہ بھی برداشت کر جاتے ہیں کہ چلو بھائی. المومن غر کریم, تو مومن جو ہے وہ بھولا بھالا ہوتا نہیں ہے, بھولا بھالا بن کر رہتا ہے, اس لیے کہ وہ کریم ہے, شریف ہے. تو مومن جو ہے اس میں تو اللہ بہت عقل دیتے ہیں, لیکن ہم اگر کسی مومن کو دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھولا ہے, نہیں, وہ شریف ہوتا ہے, وہ بھولا بن جاتا ہے, جیسے کچھ جانا ہی نہیں ہے, کچھ پتا ہی نہیں. کون لڑتا رہے اپنی اولاد سے, اپنے شاگردوں سے کون لڑتا رہے, اپنے مریدوں سے کون لڑتا رہے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے مشائخ کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی خیر سے محروم ہو جائیں. وہ ہماری اصلاح نہیں کر پائیں گے, ہمیں کہہ نہیں سکیں گے, कुछ कहा और हमें खोटा लग गया, बुरा लग गया, कुछ कहा हमने मुंह चढ़ाया, कुछ कहा उस पर अमल नहीं किया, उल्टे सीधे रास्ते पर चले, ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि हो भी गया मगर नहीं भी हुआ, तो उस्ताद समझ जाता है कि इत्तेबाई हवा का शिकार है, अब इससे लड़ने जाएंगे तो और मसला खराब होगा, फिर वो खामोश हो जाता है। इस्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रखने। मामून रशीद शानो शौकत वाला बादशाह, बचपन ही से बहुत जहीन और होशियार थे मामून रशीद और इल्म दोस्त। एक मर्तबा बैठे हुए हैं अपने साथियों के साथ, एक साहिब आए और बहुत बुरा भला कहा, तुम ऐसे हैं, तुम ऐसे हैं, तुम ऐसे हैं, तुम ऐसे हैं, खंदा पिशाने से सुनते रहे हो, था ऐसा कुछ नहीं, बस उसकी एक भड़ास थी वो निकाल दी और बोल करके चला गया। तो दरबार में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आप कुछ भी नहीं बोले हुजूर, अमीरुल मोमिनीन आपने एक लफ्ज नहीं कहा। तो अमीरुल मोमिनीन ने जो जवाब दिया वो आबे जर से लिखने के काबिल है, और इससे पता लगता है कि उस दौर में बादशाहों की सोच कितनी आली थी। मामून रशीद ने कहा कि उसे टोक कर मैं अपनी इसलाह करने वालों का दरवाजा बंद नहीं करना चाहता, ये तो गलत गलत बात बोल रहा था, लेकिन अगर मैं टोकूंगा, उसकी बाज पुर्स करूंगा, पकड़ धकड़ करूंगा, तो दूसरी मर्तबा हकीकत में मेरे अंदर कोई कमी होगी और किसी को इरादा होगा कि हमें अमीरुल मोमिनीन को बतलाना चाहिए कि ये गलती आपकी हो रही है, तो उसके जहन में इसकी सरजनिश आ जाएगी कि वहां तो कोई बोलता है तो ऐसा होता है तो वो बोलेगा नहीं, तो मैं इस्लाह का दरवाजा बंद करना नहीं चाहता। अच्छा है लोग बोले तो, ताकि हमें हमारे उलूम मालूम हो जाए। तो इस्लाह की हर शख्स को फिक्र रखनी चाहिए कि मेरी इस्लाह हो जाए, मेरी कमी दूर हो जाए, और अगर हमारे सर पर कोई ऐसा है जो हमारी इस्लाह कर रहा है, बहुत सारे मां बाप ऐसे हैं कि उनको पढ़ी ही नहीं है अपने बच्चों की, और कुछ मां बाप ऐसे हैं कि बच्चे दादा और नाना बन जाते हैं फिर भी वो टोक करते रहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा, ये नेमत है कि उनको हमारी फिक्र है। असातिज़ा ऐसे होते हैं कि उस्ताज़ुल असातिज़ा बन जाए फिर भी पकड़ करते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मत करो। शेख होते हैं कि खलीफा खुद शेख बन जाता है फिर भी पकड़ धकड़ करते हैं। तो हमारे सरों के ऊपर किसी का होना ये बहुत बड़ी नेमत है, और ये सरों के ऊपर जो साया है उसे खुद धक्के देकर मत हटाओ। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जलीलुल कदर आलिम और बहुत बड़े शेख, उनके पास जब कोई आता था मुआफी मांगने के लिए कि हजरत आपकी गीबत हो गई है, मुआफी चाहता हूं, ये अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं, हो जाती है गलती, गुनाह करना नहीं चाहिए लेकिन कभी हो जाता है, गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है तो उसके दिल में अगर ईमान है तो वो कभी भी अल्लाह की मुखालफत का इरादा नहीं करता। मैं गुनाह करने वालों के लिए कुछ नरमी पैदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है, दिल में ईमान हो और वो गुनाह करते हुए ये नीयत करे कि अल्लाह ने चूंकि मना किया है इसलिए मैं करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। गुनाह गुनाह है अपनी जगह पर, लेकिन मोमिन कभी भी अल्लाह की मुखालफत की नीयत से गुनाह नहीं करता। अल्लाह की मुखालफत की नीयत से गुनाह नहीं करता, और मोमिन जब गुनाह करता है तो इसलिए भी गुनाह नहीं करता कि उसे अल्लाह का मकाम मालूम नहीं, अल्लाह के मकाम का इस्तेहजार बराबर रहता है, वो गुनाह करते हुए नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं मुझे अल्लाह नाफे है, अल्लाह बार है, अल्लाह शदीदुल इकाब है, ये सब पता नहीं होता इसलिए करता है। नहीं, अल्लाह का मतलब भी जानता है। और मोमिन इसलिए गुनाह नहीं करता कि उसे पता नहीं है कि अंजाम क्या होगा। मोमिन को अंजाम भी मालूम होता है, मोमिन को अल्लाह का मकाम भी मालूम होता है, और मोमिन कभी भी मुखालफत के इरादे से गुनाह नहीं करता। लेकिन नफ्स जो है, नफ्स उसको चूंकि उसने कमजोर नहीं किया है, नफ्स उसका कमजोर नहीं हुआ है, नफ्स को कमजोर करने के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया है, इसलिए नफ्स का गलबा होता है, नफ्स हावी हो जाता है और वो गुनाह कर बैठता है। ये खानकाहों में जहां लोग तज़किया और इस्लाह की गर्ज से जाते हैं, मशाइख़ हक्का में से किसी शेख से बैअत होते हैं, उसका मकसद ही ये है कि ये नफ्स जो हमसे ज्यादा ताकतवर है वो इतना कमजोर हो जाए कि हमें उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल हो जाए। और आजकल लोग करते नहीं, ये करते नहीं आजकल लोग। मेरी आप सब दोस्तों से दरखास्त है कि इन 10 दिनों में अल्लाह ताला शानहु हमसे जो बातें कहलवाएं और हमसे जो बातें सुनवाएं, इनमें से एक एक बात पर अमल करने की पूरी नीयत कर लो। जहन से ये बात निकाल दो अगर ये बात है तो, कि मैं तो 10 दिन के एहतिकाफ के लिए जा रहा हूं ताकि सवाब मिल जाएगा। हम सवाब के लिए नहीं आए, हम अपनी जिंदगियों में एक इनकलाब लाने के लिए आए, एक रेवोल्यूशन। और वो रेवोल्यूशन क्या है? इत्तबाए हवा को छोड़ना है और इत्तबाए हुदा पे आना है। ख्वाहिशात और नफ्स की इत्तिबा को छोड़ना है और हिदायत और शरीयत और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पे आना है। और ये जो पीरी मुरीदी है, मशाइख़ हक्का की पीरी मुरीदी, उसको समझना है कि ये है क्या। जो लोग तज़किया की फिक्र नहीं कर रहे हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है, और जो तज़किया की फिक्र करते हुए किसी शेख से बैत हो चुके हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है, ताकि उसके तकाजों को पूरा किया जाए। सिर्फ बैत हो जाने से तो मकसूद हासिल नहीं होगा। ये कहना तो गलत है कि सिर्फ बैत होने से कुछ नहीं होगा, बैत होने से भी बहुत कुछ होता है। लेकिन सिर्फ बैत होने से मकसूद हासिल नहीं होता, समझने की जरूरत है कि बैत होने के बाद क्या क्या तकाजे हैं। और आप भी अल्लाह से दुआ करें, मैं भी अल्लाह से दुआ करूं कि इन 10 दिनों में, चूंकि बातें बहुत होती हैं, इन 10 दिनों में अल्लाह ताला शानहु बोलने वालों से वो बातें कहलवाएं जो हम सबकी जरूरत है। तो शैतान जो है, शैतान और नफ्स, ये हमारे दुश्मन है। हम नफ्स को कमजोर नहीं करते, ये हमारी गलती है। और नफ्स कमजोर नहीं होता तो वो शैतान का साथ देता है, और नफ्स कमजोर हो जाता है हमारी मेहनत के नतीजे में, तो जब शैतान नफ्स को इशारा करता है कि ऐसा करवाना है तो मना करता है कि नहीं, मेरा इस पे बस नहीं चलता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ये असल बात है। नफ्स जो है वो खारजी दुश्मन है, दाखली दुश्मन है, और शैतान खारजी दुश्मन। तो नफ्स जब तगड़ा होता है तो वो नफ्स अम्मारा होता है, और शैतान को मालूम होता है कि इसका नफ्स नफ्स अम्मारा, इसका नफ्स नफ्स अम्मारा, इसका नफ्स नफ्स अम्मारा, तो आधमकता है और नफ्स से साजबाज करके गुनाह में मुब्तला करता है। और नफ्स जब कमजोर हो जाता है इसका मतलब है कि वो नफ्स मुतमईन ना हो गया, तो शैतान जब उसे इशारा करता है कि ताउन कर, वो मना करता है कि ना, इसलिए कि वो समझदार हो गया है, अब कमजोर हो गया है। नफ्से अम्मारा ताकतवर, यानी गुनाहों की तरफ ले जाने के एतबार से, और नफ्से मुतमईना कमजोर, या यूं समझो दूसरे अल्फाज में कि नफ्से अम्मारा नादान है। अभी नर्सरी और प्राइमरी के दर्जे में है, और हमारे जमाने में हाई स्कूल कह दे तो भी कोई हर्ज नहीं है, और कभी कभी तो कॉलेज तक जाती है नादानी। लेकिन पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। और नफ्से मुतमईना जो है वो यूं समझो कि हाई स्कूल में अब आ गया, समझदार हो गया, नफे नुकसान को समझता है, या कॉलेज में आ गया, या एमए और पीएचडी कर रहा है। तो नादान जो है वो किसी की बात में भी आता है, यूं स्वीट किसी ने चॉकलेट बतलाई वो उधर चलता है, और नफ्से मुतमईना फुल ग्रोन आदमी अब हो गया, समझदार सियाना, उसे वो शैतान चॉकलेट वगैरह दिखाता है तो वो हाथ में नहीं आता, तो हो जाती है गलती। हुकूकुल लाह के मामले में, हुकूकुल इबाद के मामले में नादानी की वजह से गलती हो जाती है। हुकूकुल लाह के मामले में गलती हो जाए, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, तो अल्लाह से तौबा करें। और हुकूकुल इबाद के मामले में अगर गलती हो जाए तो अल्लाह से भी माफी मांगनी पड़ती है और बंदों से भी। यहां एक गलती ये हो जाती है कि हुकूकुल इबाद के मामले में लोग ये समझते हैं कि उससे माफ करा लेने से मामला खत्म हो जाता है, ना, अल्लाह से भी तौबा करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ी गलती है। मुफ्ती साहब आपके हक में गलती हो गई है, गीबत हो गई है, माफ कर दीजिए। मुफ्ती ने कहा कि माफ है, अब तौबा करते ही नहीं आगे। तौबा के जो शराइत हैं कि नदामत हो, अज्म करे आइंदा गुनाह न करने का, ये होना चाहिए। सिर्फ मुफ्ती साहब से माफ करा लेने से काम नहीं होगा, और सिर्फ तौबा करने से भी काम नहीं होगा, अल्लाह से मुफ्ती साहब से माफ कराना जरूरी है। तो जब इजमाली माफी मांगी जाती है किसी बंदे से कि हाफिज सईद साहिब आपसे हमारे कुछ रवाबित रहे हैं, उठते बैठते हैं साथ, आपके मामले में जितनी भी कोताहियां हुई हो माफ कर देना, और आप सब कहें कि भाई माफ है, दिल बड़ा है तो कहे माफ है, तो माफ हो गया। लेकिन जिससे माफी मांगी जा रही है अगर वो तफसील पूछे कि आपके इल्म में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने की हैं तो बताना पड़ेगा, वरना माफ नहीं होगा। सामने वाला अगर पूछे कि आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ उठना बैठना रहा है और आप इजमाली तौर पे माफी मांग रहे हैं, तो क्या आपके इल्म में कुछ नहीं है इसलिए इजमाली तौर पर माफी मांग रहे हैं, या आपको कुछ पता भी है और इजमाली तौर पर माफी मांग रहे हैं, तो आपको कहना पड़ेगा सच बात के, नहीं मुझे मालूम तो है कुछ चीजें, हो सकता है कुछ चीजें मालूम ना हो, लेकिन कुछ चीजें मालूम है। तो वो पूछे कि क्या है, तो कहना पड़ेगा कि एक मरतब आपसे 1000 पाउंड लिए थे, अभी तक मैंने लौटा ही नहीं है, आपकी मैंने बहुत गीबत की है, आप पर मैंने तोहमत भी लगाई है, कहना पड़ेगा ये। और इस तफसील की भी वो तफसील पूछे कि आपने मेरी गीबत की है तो जरा ये बतलाइए कि क्या क्या गीबत की है आपने, वो भी बताना पड़ेगा। हाँ, आप किसी तरह मुसालाहत कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि अब रहने दीजिए ना, गंदी बातें जुबान से निकली थी, वहां भी नहीं करनी चाहिए थी, अब आप मुझे आपके सामने कहने के लिए कहते हैं, रहने दीजिए ना, माफ कर दीजिए, आप अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। जैसे हमारे जिम्मे किसी के 10,000 पाउंड होते हैं और हम देने की कुदरत नहीं रखते तो किसी तरह मनाएंगे उसको, तो इस तरह मनाया जा सकता है, लेकिन अगर वो मजीद रहे, मजीद रहे تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بتانا ضروری ہے. مزید رہے تو بتانا ضروری ہے, تب جا کر کے معاف ہوتا ہے. آج کل کچھ چیزیں جو ہیں ایسی ہی چلتی رہتی ہے بغیر کسی نیت کے, جیسے ہر ٹیکسٹ میسج کے آخر میں لکھنے کا دعا میں یاد ہے, تو لکھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی یہ ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں, پڑھنے والے کے ذہن میں تو آتا ہی نہیں ہے, لیکن لکھنے والے کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں. ایک دعا میں یاد, الگ ہوتے ہوئے بھی دعا میں یاد, زبان پر ایک لفظ آ جاتا ہے دعا میں یاد. تو اسی طرح ہم لوگ گجراتی میں کہتے ہیں بولیو چالیو معاف, اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے معافی ہو, بولیو چالیو معاف. میں سننے والا دل سے معافی طلب کر رہا, کہنے والا دل سے معافی طلب کر رہا ہے, نہ سننے والے کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور کبھی کبھی سننے والے کو احساس ہوتا ہے اور وہ معاف کرنا نہیں چاہتا, تو ملاقات کر کے یوں نکل جاتا ہے کہ آگے بات بڑھو, اس سے پہلے میں معاف, اس سے معاف نہیں ہوتا. اطمینان کراؤ کہ اس نے معاف کر دیا ہے, اس لیے کہ اگر آپ اطمینان نہیں کرائیں گے تو مصیبت میں قیامت کے دن آپ پھنسیں گے. میں ایک اصول بیان کرتا ہوں کہ ایسا دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کام مت کرو جس میں خالق سے یا مخلوق سے معافی مانگنی پڑے. ایسا کام ہی کیوں کرے کہ ہمیں خالق سے کہنا پڑے کہ اللہ معاف کر دے, ایسا کام ہی کیوں کرے کہ زید عمر بکر کو کہنا پڑے کہ مجھے معاف کر دو. ایسا کام ہی مت کرو جس میں معافی مانگنی پڑے. جہاں تک خالق کا معاملہ ہے تو وہاں تو ایسی کوئی غلطی نہ ہو پھر بھی معافی مانگنی چاہیے, اس لیے کہ معافی مانگنے پر بہت کچھ اور بھی مرتب ہوتا ہے. اللہ سے معافی مانگنے کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, نہیں, استغفار اور توبہ, ہمیں تو استغفار اور توبہ خوب کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. توبہ وہاں کی جائے گی جہاں پتہ ہو, پتہ ہی نہیں ہے استغفار خوب کرو, ہو سکتا ہے. توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, خوش بختی ہے اس کے لیے جو اپنے صحیفے میں بہت زیادہ استغفار کو پائے. اس لیے استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور استغفار سے اور بھی بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ بھی کرتے تھے استغفار بھی کرتے تھے حالانکہ معصوم تھے. تو ایک سوال قائم کیا محدثین نے کہ دن میں 70-70 مرتبہ, دن میں 100-100 مرتبہ, دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم شمار کرتے تھے کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ہمارے سامنے 70 مرتبہ پڑھتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے میرے رب مجھے بخش دے, میری توبہ قبول فرما لے, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. 70 ٹائمز ایک ہی مجلس میں. تو گناہ نہیں ہے تو توبہ استغفار کس بات پر؟ تو محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں, ان میں سے ایک جواب یہ ہے جو بہت بڑھیا جواب ہے کہ توبہ اور استغفار کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس عبادت کے اور بھی بہت فوائد ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو خطاب فرما رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں, استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار طلب کرو, معاف کر دے گا, انہ کان غفارا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, استغفار طلب کرو مغفرت طلب کرو, استغفار کرو مغفرت طلب کرو, معافی مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے, غفار ہے, وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وہ غافر بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے, وہ بخشنے والا بھی ہے, وہ زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے. قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے اللہ کی یہ تین صفات بیان کی, غافر, غفور اور غفار. وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کرنے والے بھی تین درجے کے ہوتے ہیں. پہلا درجہ ظالم, گناہ کرنے والا, دوسرا درجہ ظلوم, زیادہ گناہ کرنے والا, اور تیسرا درجہ ظلام, بہت زیادہ گناہ کرنے والا. تو قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں कि अल्लाह ताला शानहु ने इशारा किया इसमें कि ये मेरे बंदे तू गुनहगार है, तुझे फिक्र है अपने गुनाहों की, फिक्र मत कर, तू अगर जालिम है तो मैं गाफिर हूं, तू अगर गुनाह करने वाला है तो मैं बख्शने वाला हूं, और अगर तू दूसरे दर्जे पर पहुंच गया है और जलूम हो गया है ज्यादा गुनाह करने वाला तो मैं गफूर हूं ज्यादा बख्शने वाला, और अगर तूने गुनाहों की सारी हदें पार कर दी है और तू जल्लाम बन गया है बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला तो फिक्र मत कर मैं भी गफ्फार हूं बहुत ज्यादा बख्शने वाला। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला शानहु तमाम गुनाहों को बख्श देते हैं। इन्नी लगफ्फारु लिमन ताब, मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूं उस शख्स को जो तौबा करे, ईमान लाए, ईमान पर मुस्तकीम रहे और आमाले सालिहा इख्तियार करके आमाले सालिहा पर मुस्तकीम रहे। तो अपने रब से इस्तिग़फार करो, वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। ये तो फायदा हुआ इस्तिग़फार का पहला। और आगे युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा। देखो इस्तिग़फार का ही फायदा भी है। वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा। वयजअल लकुम जन्नात, तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा, बागात में फल आएंगे। वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए नहरों को जारी कर देगा। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे, एक साहिब आए और उन्होंने कहा कि कहत चल रहा है, बारिश नहीं है, आप कोई तदबीर बतलाइए। तो कहा इस्तिग़फार करो। दूसरा आया, उसने कहा कि घर में कड़की चल रही है, माल की कमी है, कहा इस्तिग़फार करो। तीसरा आया, उसने कहा कि शादी को इतनी मुद्दत हो गई है, औलाद नहीं है, कहा इस्तिग़फार करो। बाग बहुत उम्दा खरीदा मगर फल नहीं आते, कहा कि इस्तिग़फार करो। तो एक साहिब वहां बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि जो भी आता है आप एक ही इलाज बदलाते हैं, इस्तिग़फार करो, इस्तिग़फार करो, इस्तिग़फार करो। तो हज़रत मसीह रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं वही कह रहा हूं जो अल्लाह ने कहा है, इस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। इस्तिग़फार की कसरत, इस्तिग़फार की कसरत। आज तय कर लोगे कम से कम 100 मरतबा इंशाल्लाह इस्तिग़फार करेंगे रोजाना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह बकसरत इस इस्तिग़फार को पढ़ते थे, या रब्ब कुल्ली शै बिक़ुदरतिका अला कुल्ली शै इग़फिर ली कुल्ल शै हत्ता ला तसअलनी अन शै। बकसरत हजरत की जुबान पर ही बात रहती थी। बहुत बड़े शेख थे, बहुत बड़े आलिम थे। या रब कुल्ल शै, ए हर चीज के रब, बेकुदरती का आला कुल्ल शै, हर चीज पर तेरे कुदरत के वास्ते से मैं दुआ कर रहा हूं। क्या दुआ कर रहा हूं? इग फिर ली कुल्ल शै, मेरे लिए हर चीज को माफ कर दे। हत्ता ला तसअलनी अन शै, ताकि तू मुझे क़यामत के दिन किसी चीज के बारे में सवाल ही न करे। लेकिन अगर किसी के लिए ये मुश्किल हो, अस्तग़फिरुल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह, क्या मुश्किल है? अस्तग़फिरुल्लाह, ये अल्लाह में आपसे मग़फ़िरत तलब करता हूं, ये अल्लाह में आपसे मग़फ़िरत तलब, 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, चलते फिरते पढ़ लो। शैतान दिल में ये भी वसवसा डालता है कि चलते फिरते पढ़ रहा है, इस इस्तिग़फार की क्या हैसियत? पहले चलते फिरते पढ़ने लगो, फिर जब इस इस्तिग़फार का मजा आएगा तो इस्तिग़फार खुद बिठाकर पढ़वाएगा। पहले इकबाल भाई से रास्ते में तो मुलाकात करें, चलते चलते तो खैर खैरियत मालूम करें। जब कोई उंस पैदा होगा तो फिर इकबाल भाई के घर जाकर चाय भी पियेंगे और वो हमारे घर आकर के चाय पियेंगे। इस्तिग़फ़ार के साथ चलते चलते तो मुलाकात करो पहले। इस शैतान हमारे रास्तों को रोकता है, चलते फिरते बढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। और मजे लेकर पढ़ना चाहिए, सुकून से पढ़ना चाहिए, लेकिन शुरू में अगर नहीं तो कोई बात नहीं, एक्सप्रेस ही सही, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, कोई बात नहीं, शुरू तो कर दो। इस्तिग़फ़ार के साथ उठना बैठना तो शुरू करो। ऐसा ही होता है, जब उंस नहीं होता, ताल्लुक नहीं होता, रास्ते में कोई अनजान आदमी मिल जाता है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, तो दिल ये चाहता है कि भाई ये कहां से मुझे रोक लिया इन साहिब ने, जल्दी बात खत्म करो। लेकिन एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, दस मरतबा, पंद्रह मरतबा, बीस मरतबा उंस पैदा हो जाता है, फिर अलग होने को दिल नहीं करता। तो सब बयाद तहिया कर लो कि इंशाल्लाह रोजाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे और इसे फिर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, 200 करेंगे, 300 करेंगे, 400 करेंगे, फिर बैठ के भी पढ़ेंगे, किबले की तरफ रुख करके पढ़ेंगे और इस तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे कि मैं जब कह रहा हूं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो जैसे एक पत्थर के ऊपर गंदगी जमी हुई है और उस पर आप पानी के कतरे डालते हैं तो वो गंदगी जो है वो टूटती है, तो मेरे इस्तिग़फ़ार कहने की वजह से मेरे दिल पर जो गुनाहों की आलूदगी है वो टूट रही है। और जब कसरत होगी इस्तिग़फ़ार की तो ऐसा महसूस होगा फिर कि सारी गंदगी दूर हो रही है। डोल भर भर के जब उस चट्टान के ऊपर आप पानी डालोगे तो वो चट्टान साफ हो जाएगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसूल जहन में रखो कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें खालिक से माफी मांगनी पड़े या मखलूक से। खालिक से तो माफी गलती करे ना करे हमें करनी है, माफी मांगनी है, लेकिन ऐसा सिचुएशन ना आए कि हमें पता हो कि ये बहुत बड़ा गुनाह किया है और मैं माफी मांग रहा हूं। और अगर हम ऐसा कोई काम कर गुजरे जिसमें माफी मांगनी चाहिए तो फिर देर मत करो, खालिक को भी राजी कर लो और मखलूक को भी राजी कर लो, खालिक को भी राजी कर लो और मखलूक को भी राजी कर लो। सिर्फ सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, ये नफ्स का हिला है, ये शैतान की चाल है कि हम ऐसा समझते हैं कि मैंने माफी मांग ली है। और कभी कभी तो लोग जिसका हक मारा है उसी को कसूरवार ठहराते हैं, मैंने तो बहुत माफी मांगी, वो अजीब आदमी है, माफी नहीं कर रहा है, यानी कसूरवार वो हो गया। अब मैंने तो बहुत माफी मांगी, क्या माफी मांगी भाई, बार बार सॉरी कह रहा है और वो भी टेक्स्ट मैसेज के जरिए। आजकल ये टेक्स्ट मैसेज जो है, टेक्स्ट ये टेलीफोन, इसने हम सबको बर्बाद कर दिया है। ताजियत तो टेक्स्ट के जरिए, मुबारकबाद तो टेक्स्ट के जरिए, तो आपस में उंस कैसे पैदा होगा, मोहब्बत कैसे पैदा होगी। छोटे मोटे हर काम में दावत भी टेक्स्ट के जरिए, दावत के भी कुछ तरीके होते हैं, छोटा बड़े को दावत दे रहा है और टेक्स्ट मैसेज के जरिए, और सामने से दावत कबूल की नहीं की उसकी कोई फिक्र भी नहीं, टेक्स्ट कर दिया हमने, वन वे ट्रैफिक चल रही है हर जगह पर। ये टेक्स्ट मैसेज है, ईमेल है, टेलीफोन है, इसको सिर्फ बदरजई मजबूरी इस्तेमाल करो। आप एक ही मदरसे में पढ़ते पढ़ाते हैं और आप असातिज़ा को चाय की दावत देना चाह रहे हैं और आप सब पर टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे को मिल भी रहे हैं, वो टेक्स्ट मैसेज के बाद उसका कोई तज़किरा नहीं, ये कैसी शराफत है। एक ही जगह पे कामकाज कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज कर दिया बस हो गए, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, माफी का भी टैक्स मैसेज, फिर आमने सामने होते हैं तो उसका कोई तज़किरा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? मोहब्बत नहीं बढ़ेगी, उन्स नहीं बढ़ेगा जब राब्ता ही नहीं है एक दूसरे के साथ। इसलिए अगर गलती हो जाए तो माफ कराओ, माफी मांगो नहीं, माफ कराओ। सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है, ये हमारे शरीयत मुतहरा के उसूल बयान कर रहा हूं। माफ कराना जरूरी है। तो अव्वल तो एक ऐसी गलती ही मत करो जिसमें माफी मांगनी पड़े, और अगर ऐसी गलती हो जाए तो इंतजार मत करो, एक लम्हे का भी इंतजार मत करो। एक अजना मोमिन को सताना भी बहुत बड़ा जुर्म है। आपने गलती की, उसके दिल को ठेस पहुंचाई, उसके दिल को तकलीफ पहुंच रही है, फिर मजीद ये कि इसने मेरे साथ ऐसा किया और माफी भी नहीं मांग रहा है, फिर मां बाप के साथ ऐसा करना, मां बाप के साथ ऐसा करना। महीने गुजर जाते हैं, साल के साल गुजर जाते हैं, और गलती के बारे में सामने वाला गलती समझे ना समझे, आपका दिल ये कह रहा है कि मैंने गलती की है। कभी कभी होता है कि सामने वाला महसूस ही नहीं करता है, महसूस करता है मगर उसकी तबीयत में शराफत है तो आपको महसूस नहीं होने देता, लेकिन जब आपके दिल में यह बात है कि मैंने गलती की है तो आप आराम से कैसे बैठ सकते हैं जब आपको पता है कि मलकुल मौत किसी वक्त भी मेरी रूह निकाल करके ले जाएगा। नेक लोगों को तकलीफ पहुंचाना, अपने असातिदा को तकलीफ पहुंचाना, अपने शुयूख को तकलीफ पहुंचाना, अहलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाना, माफी मांग लो फौरन। अदना मोमिन किया, किसी अदना इंसान के हक में भी गलती हो जाए चाहे वो मुसलमान नहीं है, उससे भी माफी मांगो, इससे कि वो भी कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा, हाथ उसका होगा, गिरीबान आपका होगा, वो भी घसीट कर ले जाएगा अल्लाह के दरबार में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत का दिन ऐसा अदल इंसाफ वाला होगा कि वो सींग वाली बकरी जिसने दुनिया में बेसींग बकरी को सींग मारा होगा तो कियामत के दिन उससे भी बदला दिलवाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से अगर किसी से किसी के हक में कसूर हो जाए तो उस कसूर को माफ करा लो कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिस दिन न दीनार होगा न दिरहम होगा। अल्लाह के कोर्ट में दीनार दिरहम कुछ काम नहीं आएगा। वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला यूखदु मिन्हा अदल वला यूखदु मिन्हा अदल वला तनफौहा शफाअ वला हुम युनसरून। उस दिन से तुम डरो जिस दिन एक शख्स दूसरे शख्स के कुछ काम नहीं आ सकेगा, एक शख्स दूसरे शख्स की तरफ से बदला नहीं अदा कर सकेगा, और उस दिन से डरो जिस दिन किसी से रैंसम नहीं लिया जाएगा, फिदिया नहीं लिया जाएगा, और उस दिन से डरो जिस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा। हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दुनिया में अगर कोई किसी मुसीबत में फंस जाए तो उसके बचने की ये चार शक्लें हैं। एक शक्ल तो ये है कि मेरे बेटे को आप छोड़ दीजिए, मुझे पकड़ के ले जाइए, मेरे बाप को आप छोड़ दीजिए, मुझे पकड़ के आप ले जाइए। तो हमारे ये मॉडर्न जमाने में तो ये नहीं चलता, लेकिन एक जमाने में ये भी चल जाता था कि भाई इनकी जगह पर इनको ले जाओ, चलो कोई बात नहीं। तो ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, एक शख्स दूसरे की तरफ से बदला नहीं दे सकेगा। दूसरा तरीका यह होता था कि भाई इन्हें छोड़ दीजिए, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं, कहा ला युखदु मिन्हा अज्ल, फिदिया भी नहीं दिया जाएगा लिया जाएगा। तीसरी शक्ल यह कि किसी बड़े की सिफारिश पर कि भाई गलती हो गई, आइंदा नहीं करेगा, छोड़ दीजिए, तो चलो भाई किसी बड़े की बात मान ली, कियामत के दिन किसी की बात भी नहीं मानी जाएगी। और चौथी शक्ल, इन तीनों शक्लों में से कोई शक्ल तुमको मंजूर नहीं है तो फिर हम आप पर हमला कर रहे हैं, जबरन आपसे छुड़ा कर ले जाएंगे हमारे कैदी को, इसलिए कि हमारा खानदान बहुत बड़ा है, कहा वला हम यून सरून, ये शक्ल भी नहीं होगी कयामत के दिन। बेटा बाप को काम नहीं आएगा, बाप बेटे को काम नहीं आएगा। या यूहन नासुत्तकु रब्बकुम, ये लोगों अपने परवरदिगार की नाफरमानी से डरो और बचो। वख्शौ यौम ला यज़ी वालिदुन अम वलदी वला मौलूदुन हो जाज़िन अम वालिदी ही शैआ। बाप बेटे को काम नहीं आएगा, बेटा बाप को काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। भाई भाई को काम नहीं आएगा, बहन भाई को नहीं, भाई बहन को नहीं, मां बेटे को नहीं, बाप बेटे को नहीं, और मां बाप अपनी औलाद को नहीं, बीवी शोहर को नहीं, शोहर बीवी को नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी के बारे में अल्लामा इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ताला ने एक हदीस नकल की है कि कयामत के दिन जब उनको देखा जाएगा तो उनकी जुबान पर ये अल्फाज होंगे, नफ्सी नफ्सी ला अस्अलुका इल्ला नफ्सी, मेरी जान मेरी जान मेरी जान बख्शी हो जाए आज, ए अल्लाह मैं आपसे मेरी जान के अलावा किसी के लिए सिफारिश नहीं करता। और चूंकि कुरान ने उनके बारे में यह कहा है कि वबर्रम बिवालिदती, मैं मेरी वालिदा का बहुत ज्यादा फरमा बरदार हूं, इसलिए बतौर खास उनकी जुबान पर यह जुमला होगा कियामत के दिन कि ला अस्अलुका मरियमल्लती वलदतनी, मैं आज आपसे मेरी मां मरियम जिसने मुझे जना था उनकी भी सिफारिश नहीं करता। ला अस्अलुका इल्ला, आज मुझे सिर्फ मेरी फिक्र है। उस दिन के आने से पहले पहले मेरे भाइयों आप साफ कर लो मामलात। भाई भाई से नहीं बोलता, बहन भाई से दूर, भाई बहन से दूर, चचा भतीजे से दूर, भतीजा चचे से दूर, कभी कभी दोनों फरीक, अक्सर अवकात दोनों फरीक। लेकिन ऐसी जगह जहां एक तरफ दीनदार भाई है, दीनदार बहन है, दीनदार चचा है, दीनदार भतीजा है, उनकी तरफ से हर मुमकिन कोशिश के बावजूद सामने वाला पसीजता ही नहीं, ताज्जुब होता है, ताज्जुब होता है। लोग मर जाते हैं, जनाजे उठते हैं खानदान के, लेकिन सामने वाला पसीजने के लिए तैयार नहीं है। उसे यह एहसास नहीं होता कि भाई जिससे मेरी लड़ाई मेरा भाई है, मेरी बहन है, और हकीकत में तो गलती मेरी है, लेकिन अगर बिलफर्ज तकबीर इनकी गलती है तो भाई है, क्या हो गया? अगर मेरे 10,000 पाउंड खा गया तो क्या हो गया? भाई खा गया, मेरे चचा है, मेरे चचा है, मैं अपने चचा को माफ न करके उनको जहन्नम में भेजूं, खुद भतीजा जहन्नम में भेजे, माफ करने के लिए तैयार नहीं कोई, मुस्कुराने के लिए तैयार नहीं एक दूसरे के साथ। हर शख्स अपनी ही दुनिया में मगन है, इतने हम सेल्फिश हो गए, इतने खुदगर्ज हो गए। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। रिश्ते नाते को जोड़ो, शरीयत ने इसकी बहुत ताकीद की है, ये अलग मजमून है, मैं इसकी तरफ अभी जाना नहीं चाहता। रिश्ते नाते को जोड़ो, मां बाप और औलाद के दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर रिश्तेदारों का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर ये पूरी मुस्लिम बिरादरी है, ये भी उख़ुव्वत इस्लामी है, आपस में बहुत अच्छे ताल्लुक हों। सामने वाला हमारे साथ कैसा ही मामला करे, हमें उसके साथ हुस्ने अखलाक से पेश आना है, हमें उसके साथ मुस्कुरा के मिलना है, हमें उसको सलाम करना है, उसकी गमी में हमें उसकी गमखारी करनी है, और उसकी खुशी में हमें उसे मुबारकबाद देना है। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग बहुत परेशान हो गए, लोगों ने बहुत सताया उनको, दीन की खिदमत करने वालों के मुखालिफ भी पैदा होते हैं। मक्का मुकर्रमा में जो शक्ल थी तो वारिसीन अंबिया जब सही काम लेकर के उठते हैं तो मुखालफत होती है, बहुत मुखालफत, अपने पराये सब की तरफ से तकलीफें होती है। एक दौर आता है, पहले मक्की दौर आता है फिर मदनी दौर आता है, तो इब्तिदा में तकलीफें होती हैं, बहुत परेशान हो गए। اور فطری طور پہ غم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم ہوتا تھا تو قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی تسلی میں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, ان کی باتوں سے آپ کا سینہ کتنا تنگ ہو رہا ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے. تسلی ہوتی تھی, خود اللہ تسلی دیتے ہیں. تو اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تسلی دیتے ہیں, اللہ ان کو خواب کے ذریعے تسلی دیتے ہیں. اور کبھی کبھی خرق عادت کوئی کرامت پیش آتی ہے, اس کے ذریعے بھی اللہ تعالی شانہ وہ تسلی دیتے ہیں, کبھی الہام کے ذریعے تسلی دیتے ہیں. تو یہ بزرگ بہت تنگ ہو گئے, بہت پریشان مغموم ہو کر کے بستی سے باہر نکل گئے, اور بستی سے باہر نکل کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کے وہاں یوں بیٹھ گئے, بہت غم میں اللہ کو یاد کر رہے تھے. تو اللہ تعالی شانہ نے تسلی کا سامان پیدا کیا اور اس کھجور کے درخت کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی, اور اس کھجور کے درخت نے ان بزرگ کو یہ نصیحت کی کہ کن مثلی, کن مثلی, تو میرے جیسا بن جا. ایک کھجور کے درخت نے کہا کہ میرے جیسے بن جا, میرے جیسا ہو جا. یہ بستی سے باہر بھاگنا یہ اللہ کے نبی کے وارثوں کا کام نہیں ہے. کن مثلی, میرے اوپر بھی لوگ بہت پتھر پھینکتے, میں کہاں جاؤں. اس نے ہی نصیحت کی, میرے پھلوں کو دیکھ کر کے لوگ میرے اوپر بھی پتھر پھینکتے ہیں, میں کہاں جاؤں. تو میں جو کرتا ہوں وہ تو کر, وہ بزرگ کو نصیحت کی. کن مثلی, میرے جیسا بن جا. انہم یرموننی بالاحجار وانا ارمیہم بالاسمار, لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں تو میں بدلے میں ان پر پھلوں کو پھینکتا ہوں. لوگ پتھر پھینکے تو بدلے میں پھل پھینکو. محبت سے رہو آپس میں, خوب محبت سے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش ہے کہ امت آپس میں مل جل کر رہے, پیار محبت سے رہے. اسی وجہ سے ہر وہ چیز جو دو شخص کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی تھی اس کو شریعت مطہرہ نے حرام کر دیا ہے, اور ہر وہ چیز جو دو آدمیوں کے درمیان میں محبت پیدا کرنے والی تھی یا محبت کو بڑھانے والی تھی اس کو شریعت مطہرہ نے مستحسن قرار دیا ہے. کبھی فرض کے درجے میں, کبھی واجب کے درجے میں, کبھی سنت کے درجے میں, کبھی مستحب کے درجے میں. آپس میں سلام کرو ایک دوسرے کو, بھائی کیوں, اس لیے کہ محبت بڑھتی ہے. آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو, اس لیے کہ محبت بڑھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے, اس لیے کہ محبت دینے والی کو بھی محبت بڑھتی ہے, اخلاص سے دیتا ہے, میرا ہدیہ قبول کر لیا انہوں نے. لینے والے کو بھی محبت ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے کچھ لے کر گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کو مجھ سے محبت ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ, ہدیہ قبول کرتے تھے, یصیب علیہا, اور خود آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی تو بدلے میں دیتے بھی تھے, ہدیہ لیتے بھی تھے دیتے بھی تھے. اس لیے یہ جو بات ذہن میں کہ ہدیہ لینا سنت ہے یہ تو رکھو ذہن میں, نکالو مت, لیکن ساتھ میں ایک اور بات بڑھاؤ, ہدیہ لینا بھی سنت ہے, ہدیہ دینا بھی سنت ہے. ہدیہ لینا بھی سنت ہے, ہدیہ دینا بھی سنت ہے. کسی نے آپ کو 50 پاؤنڈ کا ہدیہ دیا, آپ کی حالت نہیں ہے اتنی, آپ کے جیب میں ایک 50 پینی کی خوشبو وہی دے دو. اس لیے کہ ہدیے میں اللہ نے محبت کی خاصیت رکھی ہے, اس کی قیمت میں نہیں, ہدیے کی قیمت میں نہیں, ویلیو میں. ایسا نہیں ہے کہ اتنی ویلیو ہوگی تو محبت بڑھے گی, نہیں, ہدیے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے کہ لا تحقرن جارتن لجارتیہا ولو فرسن شات, ایک پڑوسن اس کے گھر میں اگر پایا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ پایا میں اپنی پڑوسن کو دے دوں, ایک سہیلی کو یہ خیال آئے کہ میں اپنی سہیلی کو ایک پایا دے دوں, تو دل میں حکارت نہ لائے. اور اس کی تشریح یہ کی ہے محدثین نے کہ دینے والی بھی اپنے دل میں حکارت نہ لائے کہ بہت معمولی چیز ہے, پتہ نہیں ان کے دل میں کیا خیال آئے گا اس ہدیے کو دیکھ کر, اور لینے والی بھی دل میں حکارت نہ لائے کہ اچھا ملا تو یہی ملا. نہ, ہدیہ ہدیہ ہوتا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھی صحابہ کو فرماتے تھے کہ الا اہدی لک ہدیۃً، کیا میں تجھے ہدیہ نہ دوں؟ تو صحابی کہتے تھے کہ کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ہمیں ہدیہ ملے، اور پھر دین کی کوئی بات سکھا دیتے تھے، یہ دین کی بات بھی ہدیہ ہے، یہ بھی ہدیہ ہے، یہ بھی ہدیہ ہے. آج کل ہدیے کا رواج ختم اس لیے ہو گیا کہ ہدیہ شان کے مطابق، کہ نہیں نہیں ذرا برا لگے گا، نہیں برا لگے گا اتنی رقم، اور جب دیتے ہیں شان کو ملحوظ رکھتے ہیں تو چونکہ بریا آ گئی کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ مولانا صالح صاحب کو 20 پاؤنڈ دینے چاہیے، لیکن خیال آتا ہے کہ یار ذرا برا لگے گا، 20 پاؤنڈ کی نوٹ اچھی نہیں لگے گی، 50 والی ذرا ٹھیک لگے گی. تو 20 ہدیہ ہے اور 30 ریا، اب یہ ملاوٹ ہو گئی. ملاوٹ ہو گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اچھا تو یہ ہوتا کہ 5 پاؤنڈ دے دیتے، ان کو مسرت بھی زیادہ ہوتی، اس سے اللہ کی طرف سے مسرت ہوتی، اور ان کے دل میں جگہ بھی زیادہ پیدا ہوتی، آپس میں مل جل کر رہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے معافی مانگنی پڑے، لیکن اگر ایسا ہو جائے، اور ہوگا، بار بار ہوگا، اس لیے کہ ہم اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، بار بار ہوگی، تو کیا کرو، فوراً معافی مانگ لو. اور تیسرا اور آخری اصول، اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے ہمارے حق میں تو اس کے معافی مانگے بغیر ہی معاف کر دو. پتا چلا آپ کو کہ یہ صاحب کچھ غیبت کر رہے ہیں، کسی نے آ کر کہا کہ فلاں صاحب تمہاری غیبت کر رہے تھے، تو اس کو بھی پہلے ٹوکو. یہ نیوز جو لاتے ہیں نا ان کو ٹوکو، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ایسے نیوز لانے والے، ان کو ہم اپنا فرینڈ سمجھے، فرینڈ نہیں ہوتے، یہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں. ان کو یہ کہو کہ تم سے اچھا وہ ہے کہ کم سے کم اس نے میری برائی اس طرح کی کہ میرے دل کو ٹھیس تو نہ پہنچے، اس نے تو چھپ کر کے کی، میرے منہ پر اگر اس نے نہیں کہا، لیکن تم تو اتنے برے ہو کہ وہی بات نقل کر رہے ہیں، میرے دل کو ٹھیس پہنچائے، وہ تم سے اچھا ہے. تاکہ اس قسم کے لوگ چگل خوری کرنا بند کر دے. یہ جس طرح اس کی بات آپ تک لے آیا ہے، آپ کی بات وہاں بھی لے جاتا ہے. یہ بیچ والے لوگ ہیں جن کو ہم فرینڈ سمجھتے ہیں، ہمارے دشمن ہوتے ہیں. حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کی تو عادت یہ تھی کہ جب متعلقین میں سے کسی کی کوئی شکایت دے کر آتا تھا تو یہ فرماتے تھے کہ وہ میرا ساتھی ہے، میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں، ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، جاؤ. اب دوسرے میں تو ہمت ہی نہیں ہوتی. اور میں یہ علاج بتلاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کے پاس کسی کی خبر لے کر آئے تو اس کو کہنا کہ ذرا 2 منٹ انتظار کر لو، ان کو بھی بلا لیتے ہیں. اس لیے کہ کہنے والا ہمیشہ آپ کو اسی طرح شروع کرے گا، تمہید پہلے باندھے گا کہ ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن میرا نام مت لینا. تو پھر کہنے کا کیا فائدہ، تمہارے نام کے بغیر تو ان کی ہم باز پرس کر نہیں سکتے. اگر کرنا ہے تو گواہ چاہیے نا، وہ کہے گا کہ نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی، تو ہم آگے کہاں جائیں. تو جب آپ میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھے تو دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کیوں آئے؟ لیکن اگر پتا چل جائے کسی نے ہمارے بارے میں غلطی کی ہے، گالی دی کسی نے ہمارے سامنے، معاف کر دو، اس کو فوراً معاف کر دو. اگر وہ ہم پر خط لکھے، ٹیکس بھیجے، خود آئے، تو ہمیں اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کیوں شرمندہ کرتے ہو آپ، ہو جاتی ہے غلطی، اس میں کیا ہو گیا، میں تو آپ کو اسی وقت معاف کر چکا ہوں. اس پوزیشن میں ہمیں ہونا چاہیے. آپ بندے ہو کر معافی کا اتنا اعلی جذبہ رکھیں گے، وہ خالق ہو کر آپ کے گناہوں کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ تو بات ذرا دور چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہماری غلطی ہو جائے تو معاف کراؤ، معافی مانگو کافی نہیں ہے. معافی مانگو کا جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ معافی اتنی مانگو کہ وہ معاف کر دے. سوری سے کچھ نہیں ہوتا، ٹیکس کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا. معلوم کرو کہ آپ نے معاف کر دیا یا نہیں، یا تو کبھی کبھی باڈی لینگویج سے معلوم ہو جاتا ہے آپ نے معافی مانگی. مولانا صالح صاحب کو ہم سے کچھ دکھ پہنچا، قریبی تعلقات میں تو ظاہر بھی کرتے ہیں دکھ کو، کرنا بھی پڑتا ہے محبت کے اظہار کے لیے کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. ناز کبھی اصلاحی معاملات ہوتے ہیں، وہ تو الگ ہے، لیکن اس میں تو معافی مانگ لی. معافی مانگنے کے بعد دیکھا कि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल गई है माशाल्लाह, बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं, हंसी मजाक सब चल रहा है, तो इत्मीनान हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह माफ कर दिया है। और जो फिक्र आखिरत वाले होते हैं ना, वो तो उसके बाद भी दो महीने के बाद पूछेंगे कि कोई दिल में आपको उस सिलसिले में ये तो ये फिक्र होनी चाहिए। हज के लिए जाते हैं, हज के लिए मैं हर साल हज में यहां कहता हूं, हज के लिए मिल मिलाकर जाते हैं। किसको मिलकर जाते हैं? जिनसे ताल्लुकात खुशगवार है। एक एक घर में जाते हैं, कहा जहां ताल्लुकात खुशगवार है, जहां ताल्लुकात बिगड़े हुए वहां कोई नहीं जाता, वहां कोई नहीं जाता। वो तो कसम खा ली है ना कयामत तक की। इसलिए कि हर आदमी अपने को हक बजानी समझता है और हरेक के सामने कहते हैं कि कयामत में भी उसे इन्हें छोड़ा नहीं हूं, इसको कयामत के दिन छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह के बंदे, तूने जिन लोगों के हुकूक पामाल किए हैं वो भी तुझे नहीं छोड़ेंगे तो तू कहा जाएगा? और तेरे इस रवैये की वजह से अगर खालिक तुझे न छोड़ने का फैसला कर दे। कभी कभी ऐसे जुमले भी सुनने में आते हैं, मैं इसे जहन्नम में भेज के छोड़ूंगा। हो सकता है कि तेरी इस ताली की वजह से अल्लाह ये फैसला कर दे कि तू ये कह रहा है एक मखलूक होकर कि इसे जहन्नम में भेज के छोड़ूंगा, मैं कयामत के दिन तेरे सामने इसे जन्नत में भेज के छोड़ूंगा। और अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करे कि तुमको माफ करना ही पड़े कयामत के दिन। अल्लाह कह दे कि इसके बदले में मैं तुझे इतनी नेकियां देता हूं, जा माफ कर दे इसको। आप माफ कर देंगे लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर दूसरों के हुकूक इतने हैं कि आप जहन्नम में चले जाएंगे। जनाजे में शरीक नहीं होते जनाजे में, और जनाजे में जो लोग शरीक नहीं होते वो तो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो है कि मरने वाला कहता है कि फुला को मेरे जनाजे में शरीक मत होने देना, वसीयत करते अपनी अपनी औलाद के लिए वसीयत करते कि उसको मेरे जनाजे को हाथ मत लगाने देना, अपने दूसरे बेटों के। और वो बेटे भी माशाल्लाह ऐसे बाप के बेटे भी ऐसे ही होंगे, इस वसीयत को पूरी भी करते हैं, कब्रस्तान में भी लड़ते हैं, मिट्टी भी नहीं डालने देते, चारों तरफ से घेराव डाल देते हैं। मैंने तो खुद ऐसे मंजर देखे हैं इसलिए कह रहा हूं। हालांकि मरने वाले को तो ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि जितने लोग आए उनकी सिफारिश अल्लाह के दरबार में मेरे हक में कबूल न हो, इसी की हो जाए। बगैर उसकी चाहत के माफ कर दो। ये तो मैंने उसूल बयान किया, असल बात ये चल रही थी कि जब हम माफी मांगे तो माफ कराना है। जब माफ कराना है तो जाहिर है कि वो जो कहेगा हम करेंगे। हाँ, हम दरखास्त करेंगे कि नहीं ऐसा आप मत कीजिए ना, माफ कर दीजिए ना, क्या आपको मिलेगा। कुछ ऐसी हदीसें ढूंढ करके ले जाएं जिसमें माफ करने की फजीलतें हैं और कहें कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप माफ कर दीजिए, दाढ़ी पकड़ ले, पांव पकड़ ले, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, कर देगा माफ अल्लाह, उसके दिल में रहम डाल देगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुकूकुल इबाद में इजमाली माफी मांग लेते हैं, उससे काम हो जाता है अगर वो माफ कर दे। बड़े दिल वाले के भाई माफ। हम लोग एक मरतबा हज में गए थे तो जो टूर वाला हमें हज में ले गया था उस बेचारे के साथ वहां धोखा हुआ। तो जिस होटल का उसने वादा किया था वहां के आदमी ने हमें दूसरे कम दर्जे के होटल में डाल दिया। अब हमारे बहुत ऊंचा टूर था, वो डिलक्स था, तो तुज्जार लोग काफी थे उसमें। और मुझे मेरे एक बहुत चाहने वाले थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने मुझे मजबूर करके उसमें भेजा। वो भी साहिबे माल थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज कराऊं, और दिल में अल्लाह ने बात ये डाली है कि तुम ही को मैं भेजूं। तो मैंने पसो पेश किया लेकिन वो मेरे पीछे बस पड़ गए। और उनको कुछ ऐसे दिल में ख्यालात आए कि ये इस वजह से मना कर रहा है, तो वो सारी चीजें उन्होंने मुझसे क्लियर कर ली। उनमें से एक बात ये है कि मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मैं तुमको हज में भेज रहा हूं, और हकीकत में उन्होंने उस पर अमल किया। तो उन्होंने मुझे बहुत ऊंचे पैकेज में मुझे दाखिल कर दिया, क्योंकि साहिब माल ने कहा कि नहीं, इसी में जाने का तुमको राहत रहेगी। लेकिन वहां गए तो पैकेज बिल्कुल लो हो गया। पैकेज तो बहुत हाई था लेकिन पैकेज लो हो गया। अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया वहां, और लड़ाई झगड़े में ये शुरू हुआ कि बहुत सारे हजरात ने मुतालबा किया कि हमें कॉम्पनसेशन चाहिए। मदीने ही में अभी तो पहले दिन ही शुरू हो गया। वो बेचारा कहने लगा कि भाई देखो, मैं तो वर्किंग क्लास का आदमी हूं, हाजियों को लाता हूं, उमरा करने वालों को लाता हूं, इसी से मेरे पूरे साल की रोजी चलती है और इसमें से मुझे कोई खास चीज मिलती नहीं, तो मैं अगर आप लोगों को कॉम्पनसेशन देने जाऊंगा तो मैं तो नकरूज हो जाऊंगा। तो अब आप लोग सबर कर लीजिए, आप यहां के हालात से वाकिफ है कि यहां क्या होता है, किसी की नहीं चलती। ये सिलसिला सब चलता रहा, अल्लाह ने हमें तो तौफीक दी, किनारा कश रहे उससे। मैं हमेशा कहा करता हूं कि दो कैटेगरी के लोग ऐसे हैं कि उनको किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक तबलीग जमात वाले और एक मदरसे में पढ़ने वाले। तबलीग जमात में जो गया हो उसे जहां सुला दो सो जाएगा, जो खिला दो खा लेगा, और जिसने मदरसे में जिंदगी गुजारी है जहां सुला दो सो जाएगा, जो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दो कैटेगरी में अरफात में गए, अरफात में इबादतें हुई, दुआएं हुई, और जैसा कि मामूल होता है हज मुबारक जैसे कि बस अब सबके हज मबरूर नसीब हो गई, मुबारकबाद देते हैं एक दूसरे को, तो सब मुआनका कर करके एक दूसरे को मुबारकबाद भी देने लगे और बोलियो चालियो माफ, जो कुछ कहा सुना माफ। वो हमारे टूर ऑपरेटर को मैंने देखा अरफात के बाद के बहुत खुश नजर आ रहे थे, जैसे कि उनका पूरा बोझ उतर गया कि भाई सभी ने मुझे तो बोलियो चालियो माफ कहा है, इसलिए मदीना मुनव्वरा की जो गड़बड़ है मक्का मुकर्रमा में इंशाल्लाह पेश नहीं आएगी। लेकिन वैसे आए मक्का मुकर्रमा फिर रोज शुरू हो गए, तो बिचारे बहुत तेज में आ गए और कहने लगे एक साहिब को जो सर गुना था सबका कि तुमने अरफात में क्या कहा था बोलियो चालियो माफ, तो क्या वही तो कहा था बोलियो चालियो माफ, कॉम्पनसेशन माफ ये किसने कहा था? बोलियो चालियो माफ कॉम्पनसेशन का किसने कहा था? कॉम्पनसेशन तो बाकी रहता है। माफी मांगो। मुफ्ती मोहम्मद साहिब रहमतुल्लाह अलैह के मल्फूजात में इस तरह का एक वाकया है कि एक तालिबे इल्म आया और उसने कहा हजरत जो कुछ हुआ हो माफ कर दीजिए, मैं अब फारिग होकर जा रहा हूं। तो मुफ्ती साहब जरीफ तबा थे, उनका तो दिल बहुत वसी था, अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। उनसे फरमाते कि मैंने उससे कहा कि क्या कुछ हुआ भी है? अब वो भी मौलवी था, तो कहा हजरत अभी रहने दीजिए ना, आप जो कुछ हुआ माफ। तो क्या कुछ हुआ या नहीं? तो क्या मतलब रहने दीजिए ना आप, क्यों खुद कुरेद करते हैं, बस माफ कर दीजिए। हजरत फरमाया कि नहीं, ये तो मेरा हक है, शरीयत मुझे ये हक देती है कि मैं मालूम करूं कुछ हुआ है कि नहीं। उसने कहा जी कुछ हुआ है, बस माफ कर दीजिए। तो मुझे फरमाने लगे कि क्या हुआ है? तो दादे में ये लोग फिर कहने लगा कि हजरत रहने दीजिए ना, माफ कर दीजिए। कहने ये तो मेरा हक है, क्या हुआ है? अब इधर से क्या हुआ है वो कहे कि हजरत रहने दीजिए ना, तो ये तो कह दिया कि हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ है वो बेचारा कैसे बयान करे? तो मोदी साहब फरमाते हैं कि मेरी तरफ से मुसलसल सवाल, उधर से मुसलसल टाल मटोल, बिल आखिर वो ये कह करके चला गया कि मैं रहने दीजिए, माफी रहने दीजिए। तो बहरहाल मुफ्ती साहब ने तो माफ कर ही दिया होगा। मैं जो असल चला हूं कि जिन लोगों को अपनी इसलाह की फिक्र होती है वो तो गोल गोल बात नहीं करते, वो अपने शेख के सामने साफ साफ कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ये ख्यालात गुजर रहे हैं, मैं घर में ऐसा करता हूं, मैं यूं करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं नमाजें छोड़ रहा हूं, मेरी नमाजें छूट जाती है, मेरी बदनजरी हो जाती है। वो तो कहता है कि ताकि इसलाह हो, और कहने की इसको इत्तला कहते, कहने के बाद फिर शेख जो तरीका बतलाए, देखो अगर गुनाह हो जाए और उस गुनाह पर काबू खुद ब खुद पा ले आदमी, तो शेख को भी इत्तला नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि गुनाह किसी के सामने गुनाह का इजहार नहीं किया है, लेकिन गुनाह हो रहा है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है, तो अब इस गुनाह से छुटकारा पाने के लिए शेख की तरफ रुजू किया जाएगा बहसियत मरीज के, कि मेरी जिंदगी में ये गुना है, आपको ये रास्ता बतलाइए, और वहां से जो कुछ बतलाया जाए फिर उसकी इत्तिबा की जाए, इत्तिला और इत्तिबा। इस्लाह की जिन लोगों को फिक्र होती है वो बिल्कुल गाफिल नहीं रहते। ये आप मामूलात की पाबंदी करते हैं बहुत मुबारक, मजलिसों में आते हैं बहुत मुबारक, सोहबत साले का एहतमाम करते हैं, बुरी सोहबत से बचते हैं बहुत मुबारक, लेकिन इसी से इस्लाह नहीं हो जाती। अगर ऐसी चीजें कुछ जिंदगी में हैं जिनसे छुटकारा नहीं हासिल हो रहा है, तो एक और काम बाकी है, वो है शेख के सामने उन हालात को रखना और शेख जो तजवीज करे एतिमाद और इंकियाद के साथ उसकी इत्तिबा करना पूरे भरोसे के साथ। इस्लाह की फिक्र हो कि ये जो मेरे अंदर बीमारियां हैं कैसे दूर हो जाएं। लोग बैत होते हैं इसीलिए बैत होते हैं कि शेख को मुंतखब कर लेते हैं ताकि शेख हमें निजात दिलाए इन चीजों से। करता अल्लाह है लेकिन शेख वसीला है। जहल का इलाज उस्ताद है, इल्म अल्लाह देता है लेकिन उस्ताद के वास्ते से। तो आमाले बद से नजात, आमाले बद से नजात जी, आमाले बद से नजात वो शेख के जरिए होता है। करता अल्लाह है लेकिन शेख के जरिए। दुनिया दारुल असबाब है, वो एक गाइड है, वो समझता है कि किन हालत में क्या करना चाहिए। तो हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत का लकब उनको मिला और बड़े बड़े लोगों ने ये लकब दिया और आज तक बड़े बड़े लोग इस लकब से हजरत को याद करते हैं। और जितने सलासिल हैं ये तज़किया के, जितने सलासिल, आज कोई सिलसिला ऐसा नहीं है कि जिसका शेख हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से मुस्तफीद नहीं होता और वो हकीमुल उम्मत का तज़किरा नहीं करता। मुजद्दिद ज़माना, बहुत बड़े आदमी, लेकिन इस्लाह की कितनी फिक्र थी वो मैं बताना चाहता हूं। जब कोई हजरत के पास आता था और कहता था कि हजरत आपके हक में कोताही हो गई है, गीबत हो गई है, मुझे माफ फरमा दीजिए, देखो उस जमाने के लोगों को अपने आखिरत की कितनी फिक्र होगी। कोई आसान काम होगा हजरत हकीम मुहम्मद को जाकर कहना कि हजरत गीबत हो गई आपकी, माफ कर दीजिए। तो हकीम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई ये तो तुमने कहा कि गीबत हो गई, लेकिन माफ करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या गीबत की थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात। ये रिजालुल आखिरत थे, पूछते थे कि क्या गीबत की थी तुमने मेरी। तो टाल मटोल बिचारा करता था, जबरन उसे कहना पड़ता था कि हजरत आपके बारे में मैंने दूसरों के सामने ये बात की। तो एक साहिब ने हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि आप तो बहुत मुश्फिक हैं, आप तो बहुत रहम दिल हैं। एक शख्स आपके पास माफी मांगने के लिए आता है और वो कहता है कि आपकी गीबत हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, तो आप यही माफ क्यों नहीं कर देते, उसको इस परेशानी में क्यों मुब्तला करते हैं कि आप पूछते हैं कि मेरी क्या गीबत की है। तो हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि गीबत कहते हैं उस गुफ्तगू को जिसमें गुफ्तगू करने वाला किसी के ऐब को बयान करता है और वो ऐब उसमें मौजूद है। मसलन मैं किसी के सामने ये कहूं कि वो इब्राहिम जो है ना बड़ा बखील है और हकीकत में वो बखील है, ये गीबत है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि इब्राहिम बहुत बखील है हालांकि वो सखी है, तो ये बोहतान है। तो हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि गीबत उस गुफ्तगू को कहते हैं जिसमें एक शख्स किसी की बात करता है और उसकी ऐब जो है उसके ऐब को बयान करता है, और ऐसा ऐब जो उसमें होता है। तो जब मुझे कोई आकर कहता है कि मैंने आपकी गीबत की है, इसका मतलब है कि मेरा कोई ऐब किसी के सामने बयान किया है, तो मैं पूछता इसलिए हूं कि ताकि मुझे मालूम हो जाए और मैं उसकी इस्लाह कर लूं। मैं पूछता इसलिए हूं कि ताकि मुझे मालूम हो जाए और मैं उस ऐब की इस्लाह कर लूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जैसा जलीलो कद्र सहाबी दूसरे सहाबा को पूछा करते थे कि आपको मेरे अंदर कोई ऐब नजर आ रहा है, आपको मेरे अंदर कोई ऐब नजर आ रहा है, आपको मेरे अंदर कोई ऐब नजर आ रहा है, इसलिए कि खुद को नजर नहीं आता, खुद को ऐब नजर नहीं आता। मेरे चेहरे पर क्या है वो आपको नजर आता है, मुझे नजर नहीं आता। हमारे अंदर क्या बुराई, कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत देखा होगा कि किसी के बारे में कोई गीबत कर रहा है और ये कह रहा है कि वो बड़ा बखील है, हालांकि वो खुद बखील होता है, उनको अपना बुखल नजर नहीं आता, किसी और का बुखल नजर आता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह उन्हों पूछा करते थे कि मेरे अंदर कोई ऐब, मेरे अंदर कोई ऐब, आपको कुछ नजर आता है, आपको कुछ नजर आता है। एक मरतबा उन्होंने हजरत हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह तआला से ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि हुज़ैफ़ा को मैंने मुनाफिकीन की फहरिस्त बता दी है कि कौन कौन मुनाफिक है, और यह राज की बात है, प्राइवेट बात है, हुज़ैफ़ा किसी को बता नहीं सकता। तो राज की बात है, प्राइवेट बात है, इसलिए मैं आपको पूछ तो नहीं सकता, लेकिन एक मुझे सवाल का जवाब दे दो कि उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। इतने जलील कदर सहाबी होने के बावजूद भी डरते थे कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं, उसमें मेरा नाम तो नहीं है। इसीलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की एक बात पर आज की बात को खत्म करता हूं, काफी ताखीर हो गई है, कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस्लाह के चार तरीके हैं, अगर कोई अपनी इस्लाह कराना चाहता है तो उसके चार तरीके हैं। असल तरीका तो यह है कि किसी शेख कामिल को अपना शेख बनाए, उनके हाथ पर बैत हो, उनसे अपना इस्लाही ताल्लुक कायम करें और उनकी रहनुमाई में धीरे धीरे चले, उनकी रहनुमाई में दिल को गफलत से निकालकर जिक्र की तरफ लाए, जिंदगी को मासियत से निकालकर ताअत की तरफ लाए। असल तरीका तो यही है, इत्तला और इत्तिबा। और शर्माए नहीं, शेख जो है शेख वो किसी किस्म में जिक्र नहीं करता, तभी तो वो शेख कामिल है। अगर आपके वजूब को किसी और के सामने बयान करके फलाने तो मेरे ऊपर खत्म ही लिखा। हाँ, शेख जो है इजमाली तौर पर सबको नसीहत करने के लिए इस तरह कह सकता है कि लोगों को पता ही ना चले, मसलन किसी की बहुत मख्फी बात है तो शेख इस तरह कह सकता है कि एक साहिब का मेरे ऊपर खत आया था और उन्होंने ये लिखा था तो मैंने जवाब में ये लिखा, और शेख को यकीन है कि ये बात अगर बाहर भी जाएगी तो किसी को पता चलने वाला नहीं है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए कि वो बात मख्फी है बहुत ज्यादा। वरना शेख किसी के सामने बात को जाहिर, ये तो नाजायज है, हराम है कि शेख किसी के सामने किसी को वजूद बयान करे। शेख का इंतखाब कर ले, अच्छे शेख का। और हमारे यहां से इस्लामिक दावा एकेडमी से एक लीफलेट भी छप गया है, पास टू प्यूरिफिकेशन, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मजमून है कि शेख को कैसे तलाश किया जाए। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक तरीका तो यह है इस्लाह का, और फरमाते हैं कि असल तरीका यही है, असल तरीका यही। लेकिन जब तक किसी शेख से वाबस्तगी न हो, शेख को अभी ढूंढ रहे हैं, तो उस वक्त तक और बैत होने के बाद भी दूसरे तीन तरीके भी इख्तियार किए जा सकते हैं इस्लाह के लिए। अभी शेख नहीं है तो क्या करें, ऐसे ही बैठे रहें? शेख नहीं है तो क्या करें, ऐसे ही बैठे रहें? पेट में गड़बड़ है, दवा भूल गए हैं, तो वक्ती तौर पर अगर कोई दूसरा इलाज भी मिल जाए तो इस्तेमाल करेंगे। तो शेख मिल नहीं रहे हैं, अभी अभी ढूंढ रहे हैं, वो लीफलेट पढ़ करके देख रहे हैं कि ऐसा शेख मुझे कहीं मिल जाए। तो तीन तरीके, और शेख मिल जाए तो असल इलाज तो शेख करेगा मगर इन तीन से मदद बहुत मिलेगी। तो ये चार तरीके मुस्तहजर कर लो। एक तो एक शेख अपने आप को शेख से वाबस्ता करे। दूसरा तरीका ये है कि दूसरे लोगों में जो ऐब नजर आए उससे अपनी इस्लाह करें। देखा कि फुला के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो फौरन देखे कि मेरी दाढ़ी है कि नहीं। अपना ऐप तो नजर नहीं आएगा लेकिन दूसरे में ऐप नजर आ जाएगा। एक जगह पर कहीं गए और देखा कि एक आदमी बहुत बोल बोल करता है। तो दिल में ख्याल आएगा कि यार अजीब आदमी है, कितना बोलता है ये देखो। तो घर आकर के खुद के बारे में सोचो कि कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं करता। जब किसी में ऐब नजर आए तो उसके ऐब से अपने ऐब को ढूंढो और मालूम करो कि मेरे अंदर ये ऐब है या नहीं, और इस्लाह करो। तीसरा तरीका, एक तो एक शेख, ये असल तरीका है। दूसरा एक दूसरों के ऐब से अपने ऐब को ढूंढो। तीसरी बात, दुश्मनों की आपके कानों में कोई बात पहुंचे कि दुश्मन आपके बारे में ऐसा कह रहा है, کہ اس سے اپنی اصلاح کرو. اس لیے کہ دشمن اگر 10 آپ کی برائی کرے گا اس میں دو چیزیں تو ایسی ہوں گی جو حقیقت میں آپ میں ہیں, ساری تو غلط نہیں ہوگی. تو دشمن جو ہے, دشمن اس کا ریڈار ہر وقت ہم پر رہتا ہے, وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی ہو جائے تو میں بات کروں کسی کے سامنے. تو دشمن آپ کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں اس کو اگر آپ, وہ بات اگر آپ کے کانوں میں آئے تو فوراً چیک کرو کہ کہیں یہ بات ڈیفینس میں مت آ جاؤ کہ نا 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 یہ میرا دشمن ہے اس نہیں, حقیقت میں غور کرو اور کہ ہاں واقعی صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ پیرانہ سالی میں ہیں, نابینا ہو گئے ہیں, اور ان پر جو خطوط آتے ہیں تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ, یہ خدام جو ہے وہ پڑھ کر سناتے تھے, اور حضرت جو جواب لکھواتے تھے وہ جواب لکھتے تھے. تو باطل نظریات کے کچھ لوگ جن پر حضرت نے رد کیا تھا کہ یہ بدعت ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, وہ حضرت کے بارے میں بہت بری بری باتیں لکھتے تھے, پیمفلٹ شائع کرتے تھے اور پوسٹ بھی کرتے تھے حضرت پر. تو ایک مرتبہ پیمفلٹ آیا, دوسری مرتبہ پیمفلٹ آیا, تیسری مرتبہ پیمفلٹ آیا. اب پڑھ کر سنانا بھی تو بہت مشکل ہے کہ وہ رشید احمد جو گنگوہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے, اس میں کافر تک کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی تھی اور حضرت اس کا جواب کچھ تحریر نہیں کراتے تھے. تو ان لوگوں نے اس قسم کے اشتہارات کو حضرت کو سنانا بند کر دیا. کیسے سنائیں؟ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مولوی یحییٰ, کیا ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ ہمارے دوست ہمیں یاد نہیں کر رہے ہیں؟ تو کہا حضرت یاد تو خوب کرتے ہیں لیکن اس میں ایسی گندی گندی باتیں ہیں کہ آپ کو سنانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. حضرت نے کہا نہیں, ہر بات مجھے سناؤ, ہر بات مجھے سناؤ. آگے والا جملہ خاص سننے کے قابل ہے, مجھے ہر بات سناؤ, اس لیے کہ میں تو اس نیت سے سنتا ہوں کہ شاید ہمارے دشمن نے کوئی ایسی بات لکھی ہے جو حقیقت میں ہماری زندگی میں ہے, تاکہ ہم توبہ کر کے اصلاح کر سکے اپنی. ہر بات ضرور سناؤ, ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں. تو دشمن جب کوئی بات کہے اور وہ ہمارے کانوں تک پہنچے تو تیش میں نہیں آ جانے کا کہ دیکھا پھر اس نے میرے بارے میں بات شروع کر دی. نہیں, غور کرو کہ وہ جو بات کہہ رہے حقیقت میں ہے اور ہے تو اصلاح کر لو. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو کہہ کے رکھو کہ آپ ہمیشہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں رہتے ہیں, مولانا احمد صاحب میرے رفیق حضر اور رفیق سفر رہتے ہیں, تو مجھے ان کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی بات نظر آئے جو معیوب ہو, جو میرے دین کے لیے مضر ہو, جو میری آخرت کے لیے مضر ہو, تو آپ حیا نہ کیجیے, بلکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے ادب ہی کے ساتھ صحیح لیکن مجھے بتلا دیا کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ تم میں میرے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے تو میں اصلاح کی فکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو نصیب کرے. تو اصلاح کی فکر کے ساتھ آنا چاہیے, ادب سے بیٹھنا چاہیے, ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی ادنا مومن کو بھی ٹھیس پہنچے, بالخصوص ہمارے مشائخ, ہمارے اکابر, ہمارے اساتذہ اور ہمارے ماں باپ, اہل تقویٰ, اہل دین بہت خیال رکھا جائے. اور گول گول بات نہ ہو, ٹوسٹ کر کے بات نہ کی جائے, ایسا پریٹینڈ نہ کرے کہ آپ نے یہ کہا مگر میں نے یہ سمجھا ہے, نہیں یہ غلط. ایسا نہ سمجھے کہ ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے, یا یہ کہ پتا ہے لیکن چونکہ کچھ بولتے نہیں تو میں بھی اسی طرح پریٹینڈ کروں کہ ان کو ناراضگی لگا تو صحیح کہ پہلے جیسی بشاشت نہیں رہی ہے, لیکن جب تک کوئی کچھ کہے نہیں ایسے ہی چل, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح مقصود نہیں ہے. میرے یہاں قدم نہیں رکھتے, میرے یہاں آتے نہیں, پہلے جیسا فون نہیں, پہلے جیسا ٹیکس نہیں, اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو. تو فکر کرنی چاہیے اور اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا, دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان, ترقی نہیں ہوگی ہماری. اللہ تعالی شانہ ہم سب کے آنے کو قبول فرماوے, ان مجالس کو بھی قبول فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی شانہ ان سب باتوں کو ذہن میں نوٹ کرنے کی اور نوٹ کر کے ان کو عملی جامہ پہنانے کی، ان کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.